నమో వచ్చాయాణం నమో లోయే సవ్యసాహూణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారికం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం. నమ సమయసారాయ స్వానుభూత్యా చకాసితే చిస్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచ్చిదే వందితు సవ్యసిద్ధి ధూమచలమణోయం గదిం పత్తి వోచామి సమయ పాహుడ్ వణిదం.
అభి హం సభీ లోగో నే పరమ ఉపకారీ పూజ్య గురుదేవ్ కా నిర్జరా అధికార కి గాథా పర్ జ్ఞానీ ధర్మాత్మా సమ్య దృష్టి స్వపర కే సంబంధ మే విశేష రూప సే క్యా జానతా హై యే చర్చా గురుదేవ్ శ్రీ కే మాధ్యమ సే ఉన్కే ముఖార్ బింద సే అపన్ లోగో నే సునీ. దేఖో దో బాతే హై, సమ్యక్ దృష్టి క్యా జానతా హై యే తో ఆచార్య దేవ్ నే బతాయా హై నా. తో అపన్ లోగ్ తో బిల్కుల్ బహుత్ పక్కె సౌకార్ లోగ్ హై. सम्य दृष्टि की बात होती है ना तो बिल्कुल अपने पे नहीं लगाते अपन कि भाई साहब ये तो सम्य दृष्टि जानता है, अपना काम नहीं है. अरे सच में ये कह करके वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर तुझे भी सम्य दृष्टि होना हो ना तो इसी तरह स्व पर का विभाजन करने योग्य है. ये कहकर के पल्ला झाड़ने जैसा नहीं है कि तो समय दृष्टि जानता, अपने को क्या करना है इससे, अपने को समय दृष्टि होना कि नहीं होना. अपन लोग बहुत बढ़िया एकदम साफ सुथरे बिल्कुल जैसे वो जलते भिन्न कमल है होता है ना, ऐसे अपन लोग होते हैं. कैसे, जब आचार्य कहते हैं जब ये बहिरात्मा, ये तो बहिरात्मा की बात है, अज्ञानी की बात है ना. जब कोई ज्ञानी की बात आवे ये तो ज्ञानी की बात है, धर्मात्मा की बात है, अंतरात्मा की बात है. अरे ये तो परमात्मा की बात है, अपन क्या है, अपन न तो भाई साहब बहिरात्मा, ना तो अपन अंतरात्मा और ना तो अपन परमात्मा. बिल्कुल अपने को एकदम बचा करके ले जाते हैं. सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा बहिरात्म दशा की चर्चा कर रहे हो तो उस समय अपने को ये ख्याल में आना चाहिए कि ये मेरी वर्तमान वर्तती दशा की चर्चा चल रही है. एक बात समझ लेना, मैं वर्तमान में आत्मा के विराधना की इस दशा में वर्त रहा हूं और उसका ज्ञान आचार्य देव मुझे करा रहे हैं. और जब ज्ञानी धर्मात्मा की बात आवे, सम्य दृष्टि ऐसा जानता है, मुनिराज ऐसा प्रचुर आनंद का वेदन करते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर की मस्ती ऐसी अद्भुत होती है ना, कि जो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहविंद्र के नाही कहो, ऐसा अतिंद्रिय आनंद उनको होता है. उस समय क्या परिणाम आना चाहिए कि ये मेरी निकट भविष्य की दशा है. पता नहीं साहब, अब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सम्य दर्शन होगा कि नहीं होगा, है ना. कहते भाई तू पहले शुरू में घर से रोता हुआ गया है तो मरे की खबर तो निश्चित रूप से लाएगा, ये समझ लेना. अरे अंदर से ऐसा फोर्स क्यों नहीं आता है कि जब आचार्य देव ने समय सार मेरे लिए लिखा, नहीं जगत के कल्याण के लिए समय सार लिखा, तुम जगत के कल्याण की चिंता छोड़ो, अपने कल्याण की चिंता कर लो. आचार्य कह रहे हैं समय सार किसके लिए लिखा, तो एक भाव अंदर से आना चाहिए मेरे लिए. अमृतचंद्र आचार्य ने टीका किसके लिए लिखी, मेरे लिए. गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक समय सार पर मूसलाधार प्रवचन की वर्षा की, किसके लिए? मेरे लिए। जगत के, जगत की जगत जाने, मुझे जगत का ठेका नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए। अंदर से ऐसा फोर्स अपना आवे तो अंतरात्मा की बात चले तो ये मेरी अति अल्प काल में, अति निकट काल में होने वाली दशा की बात कर रहे हैं। आ गया। और जब परमात्मा दशा की बात करे तब भी ऐसा लगना चाहिए कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य। भविष्य में भी लंबा होता है भविष्य, तो बहुत वह निकट भविष्य मम जान। तो मेरा अति अल्प काल में वो परमात्मा दशा की प्राप्ति मुझे होने वाली है, ऐसा अंदर से फोर्स भी जब तक नहीं आवे तब तक उसके लिए पुरुषार्थ कैसे करेगा। और एक एक बात को कितनी खोल खोल करके आचार्य भगवान समझाते हैं। देखो एक बार एक लाइन में वो सब कह सकते थे ना, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव एक लाइन में कह सकते थे ना, लेकिन एक एक बात को खोल खोल करके, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ के इतना, अब जब ये सब मैं नहीं हूं तो इतना ज्ञान कराने की आवश्यकता क्यों है, इतना डिटेल इनकी करने की आवश्यकता क्यों है। कि यदि हमने इनमें अपनापन नहीं माना होता तो इनका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। हमने इनमें एक एक चीज को अपने गले से लगाया है, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, बस यही 24 घंटे अपनी रटन चलती है। आचार्य देव अपने को भुलाना चाहते हैं, है ना। और ऐसी अद्भुत निर्जरा की बात, और निर्जरा होती है संवर पूर्वक, कि संवर के बिना निर्जरा नहीं होती। क्यों भाई साहब? क्योंकि पहले शुद्धि प्रकट हुई होगी तो शुद्धि बढ़ेगी ना। जिसके पास शुद्धि प्रकट हुई ही नहीं उसको शुद्धि बढ़ने का संभावना कहां है? शुद्धि का प्रकट होना इसको बोलते हैं संवर, और शुद्धि की वृद्धि होना इसको बोलते हैं निर्जरा। तो जब निर्जरा होती है तो वो सच्ची निर्जरा संवर पूर्वक होती है, और संवर होता है आत्मा की उपलब्धि से। कैसे होता है संवर? आत्मा की उपलब्धि। उपलब्धि माने क्या? कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में। अभी तक हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में क्या है? कि श्रद्धा में परद्रव्य, ज्ञान में परद्रव्य, और चारित्र में परद्रव्य। परद्रव्य अथवा परद्रव्य से संबंधित भाव, उन्हीं में अपनापन है, उन्हीं को अपना जानते हैं, और उन्हीं में अपने पने रूप आचरण करने का मिथ्या प्रयास करते हैं। ये बात पक्की? तो अभी आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक ये प्रयास तेरा रहेगा तुझे आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। और आत्मा की उपलब्धि से होता है संवर। कभी आत्मा की उपलब्धि के लिए क्या करना? तो कहते भेद विज्ञान से आत्मा की उपलब्धि होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो जो वास्तव में अनात्मा है, क्या है वास्तव में? कि जो अनात्मा है हमें, उनमें आत्मा अपने की भ्रांति हो गई, है ना। जो वास्तव में कर्म का माल है, गुरुदेव आज फरमा रहे थे ना आज के प्रवचन, वही बात है। संवर अधिकार में जो चर्चा शुरू की गाथा में आ गई, निर्जरा अधिकार में उसी बात को और विशेष रूप से कह रहे हैं। देखो कि जो वास्तव में कर्म का माल है ना, कर्म की कोरियर है, जीव उस पर हस्ताक्षर करके अपने खाते में डाल रहा है, उसे कर्म का माल है। ये राग देश मोह, सीधा सीधा शब्द का प्रयोग किया, कर्म राग नाम का कर्म का पुद्गल कर्म, उसका ये विपाक। और कितनी बढ़िया बात कि देखो आत्मा ज्ञान और आनंद की खदान है, तो ज्ञान और आनंद की खदान में से क्या निकलेगा? जिसमें जो होगा वो उसमें से निकलेगा, अथवा जिसका जो स्वरूप है वैसा परिणमन, वो उसका परिणमन है, और उससे विरुद्ध परिणमन वो वास्तव में उसका परिणमन नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे इसके लिए कि गुड़ की भेली होती है ना, गुड़ की, तो बिल्कुल ठोस पिंड है वो। अब वो पिघल करके, उगल करके, जिसे अपन बोलते हैं कि वो झरे, है ना, तो उसका जो झरना होगा, उसका जो झरना होगा
उसका झरण कैसा होगा, कि गुड़ कैसा है कि मीठा है, तो उसका झरण भी कैसा होगा कि मीठा होगा। और अगर मान लो वो झरण कड़वा कड़वा आ रहा है तो अपने को क्या समझ लेना चाहिए कि भाई साहब हो सकता है जहां से ये गुड़ का झरण आ रहा है वहीं कोई नीम के तेल की शीशी गिरी हुई पड़ी है और ये उसका रस है, ये गुड़ का रस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुड़ मीठा होता है इसलिए गुड़ का रस भी मीठा ही होगा। नीम कड़वा होता है तो उसका रस कड़वा होगा। अरे जब भगवान आत्मा में विकार को पैदा करे, विकार को उत्पन्न करे, अशुद्धता को उत्पन्न करे, ऐसा कोई गुण, ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई स्वभाव नहीं। और विकार की उत्पत्ति अगर देखी जाती है तो निश्चित रूप से यह नक्की कर लेना चाहिए कि यह आत्मा का प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, ये कोई दूसरा इसका उत्पादक है। और जो इसका उत्पादक है वो कौन है, जब ये खोज की जाती है तब जैन दर्शन का ये मौलिक अनुसंधान, ऐसा गजब का अनुसंधान कि आत्मा में राग को उत्पन्न करे, आत्मा में विकार को उत्पन्न करे, आत्मा में क्रोध को उत्पन्न करे, आत्मा में कषाय को उत्पन्न करे, ऐसा कोई गुण नहीं। और कर्म में इस प्रकार का स्वभाव ही पड़ा है, राग नाम का कर्म है, क्रोध नाम का कर्म है, मान नाम का कर्म है, तो ये वास्तव में कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है ना। वो बात यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं। क्या होता है कि अभी अपने को जो मूलतः जहां पर एकत्व बुद्धि है, कि जहां अभी अत्यंत भिन्न पर पदार्थ शरीर और कर्म इनसे भी भेद ज्ञान नहीं होता है, या इनसे भी भगवान आत्मा भिन्न है ऐसा ख्याल में नहीं आवे, तभी तक राग से पार भगवान आत्मा है, उपयोग में उपयोग। चर्चा तो यहां से शुरू की आचार्य देव ने, हालांकि बाद में वो कर्म और न कर्म पर भी ले गए। लेकिन देखो कभी अपने को ऐसा नहीं लगता कि जब पहले राग से भिन्न कर दिया, उपयोग से उपयोग, उपयोग में उपयोग और क्रोध में क्रोध, तो फिर कर्म और नो कर्म की चर्चा करने की जरूरत क्या थी? माने या अगर यह चर्चा करनी ही थी तो फिर पहले उन्होंने कर्म और नो कर्म से चर्चा क्यों नहीं उठाई? वो गंभीर प्रश्न है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? उपयोग में उपयोग, चर्चा कहां से शुरू की? देखो गाथा पढ़ी थी ना कल अपन ने, हां, उपयोग मा उपयोग को क्रोधादि, उपयोग नहीं क्रोधादि मा, छे क्रोध क्रोध महीज निश्चय क्रोध नहीं उपयोग मा। ये बात हो गई। अब दूसरी गाथा में कही उपयोग छे नहीं अष्ट विधि, कर्मो अने नो कर्म मा, कर्मो अने नो कर्म कहीं पण छे नहीं उपयोग मा। बहुत गंभीर है बात। क्या कहा यहां पे कि देखो भाई, पहले नंबर में उन्होंने कहा कि उपयोग में उपयोग है। अभी मैं चर्चा करूंगा एक एक बात की विस्तार से, और पूरा विषय आपके सामने गुरुदेव की कृपा से, अपन लोगों की तो कोई सामर्थ्य नहीं है वास्तव में, ये तो गुरुदेव ने इनके अर्थ नहीं खोले होते ना तो अपन लोग बोलने के लायक भी नहीं होते। ये तो जो भी अपन जो कुछ टूटा फूटा बोल लेते हैं ना, अपन लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं, ये सब तो गुरुदेव का प्रसाद है जो अपन सब मिल बांट करके उसका रसा स्वादन कर रहे हैं। तो देखो यहां पे कि पहली गाथा में जब उन्होंने उपयोग में उपयोग और क्रोध में क्रोध की चर्चा कर दी, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, तो दूसरी गाथा में उपयोग अष्टविध कर्म में और नो कर्म में नहीं है यह चर्चा करने की जरूरत क्या थी? कि भाई साहब जब आपने क्रोध को क्रोध में, राग माने उपयोग को उपयोग में बता दिया, क्योंकि जिस क्रोध, क्रोध का मतलब यहां पे क्या है कि क्रोध माने अकेला क्रोध नहीं, क्रोध एक प्रतिनिधि है किसका, कि विकार का। सारे विकार परिणाम जितने हैं उन सबके प्रतिनिधि तरीके क्रोध है। जैसे क्या होता है, अंताक्षरी की टीम गेम खेलते हैं ना, दस लक्षण में कभी प्रोग्राम होते होंगे तो अंताक्षरी का एक कार्यक्रम आप लोग करते हो अगर कदाचित, तो उसमें क्या होता है 1 2 3 एक दो तीन टीम होती है मान लीजिए, ठीक है। तो वो टीम में 50 मेंबर हो, इसमें भी 50 मेंबर हो, उसमें भी 50 मेंबर हो, तो उसका नाम अपन कुछ भी दे देते हैं और अपन मुमुक्षु है तो फिर क्या देंगे, सम्य दर्शन टीम, सम्य दर्शन ज्ञान टीम, सम्यत्र टीम, अपने नाम भी तो ऐसे होते हैं अद्भुत अद्भुत नहीं होते। तो अपन ने वो नाम दिया सम्य दर्शन टीम, तो सम्य दर्शन टीम का मतलब क्या हुआ, 50 मेंबरों का एक नाम सम्यक दर्शन टीम। इसी तरह यहां क्रोध, तो यहां क्रोध माने अकेला गुस्सा नहीं, क्रोध माने क्या होता है सामान्य तौर पे, क्रोध माने गुस्सा, लेकिन यहां क्रोध माने गुस्सा नहीं, लेकिन क्रोध माने आत्मा के तिरस्कारी जितने भाव हैं, आत्मा का तिरस्कार करने वाले जितने मोह के उदय के परिणाम हैं, वो मिथ्या दर्शन से लेकर क्रोध मान माया लोभ से लेकर पुण्य पाप से लेकर, अरे वास्तव में कहूं तो जिस भाव से निगोद मिलता है उस भाव से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो सब भाव क्रोध में जाएंगे। बोलो समझ में आती है कि नहीं बात, धरती हिलती कि नहीं हिलती थोड़ी, गए तीर्थंकर प्रकृति जी भाव बंधे वो क्रोध। सुन लो भैया, यहां तो अभी क्रोध ही कह रहे हैं, समय सार में तो और गजब का कहा, 148 कर्म प्रकृतियों को विष वृक्ष कहा, विष वृक्ष के कर्म रूपी विष वृक्ष के फल, और उसमें तीर्थंकर प्रकृति को भी डाला। गुरुदेव श्री तो स्थानकवासी जब संप्रदाय में साधु थे उस समय यह बात बोलते थे, प्रवचन में बोला था ना, प्रसंग आते कि नहीं आते हैं, आता है ना, कि वो सभा में बोला, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भाव धर्म नथी, केम नथी के धर्म थी बंद थतो नथी, ने जे भाव थी बंद थाय ते भाव धर्म होय नहीं। ये बात गुरुदेव ने उस समय कही थी, बोलो आप। तो ये क्रोध उन सब विकारी भावों का प्रतिनिधित्व है। तो प्रश्न ये कि क्रोध क्यों लिया, और कोई नाम नहीं मिला अच्छा सा कि जिसको जिसका नाम सुनते हमारी भ्रुकुटी तन जाए, ऐसा नाम क्यों लिया, कोई और अच्छा सा नाम दे देते। अरे जब उनको नाम ही देना था विकार को, है ना, तो कोई अच्छा सा नाम दे देते, अरे पुण्य ही नाम दे देते, अपन लोगों को तो पुण्य का रहस्य, अपन के पुण्य ही नाम दे देते। क्रोध नाम दिया उसके पीछे आचार्य देव का बहुत गहरा चिंतन है। क्या गहरा चिंतन है कि क्रोध माने जब तुझे आत्मा के प्रति क्रोध होता है, जब तुझे आत्मा के प्रति क्रोध होता है तो ये सारे परिणाम होते हैं। आत्मा के प्रति क्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है कि जिसके प्रति हमें क्रोध होता है हम उसकी शकल देखना पसंद नहीं करते, और कदाचित वो सामने आ जावे तो अपन लोग क्या बोलते हैं, ए भाई सामने से हट जा, क्यों, क्योंकि तुझे मैं देखता हूं ना मैं उबलने लगता हूं, है ना। तो ऐसे ये क्रोध है, ये क्रोध माने कि जो आत्मा को देखते ही उबलने लगे, जिसे आत्मा सुहावे नहीं, तो ये विभाव को आत्मा सुहाता नहीं, और जिसे आत्मा सुहाता है वो परिणाम कभी विभाव रूप हो सकता नहीं। इसलिए आचार्य देव ने एक नाम दिया कि ये क्रोध, अरे ये नाम यही नहीं दिया, है ना, ये कर्ता कर्म अधिकार में भी क्रोध शब्द का बहुत प्रयोग किया है। उसके पीछे एक ही कारण है कि ये परिणाम आत्मा के प्रति अवज्ञा। अब देखो सम्य दृष्टि धर्मात्मा, उनको दृष्टि अपेक्षा से भले ही वो नहीं है लेकिन चारित्र में भी उतनी अस्थिरता का परिणमन है। अज्ञानी को मिथ्यात् रूप विभाव का परिणमन, और ज्ञानी की भूमिका में अस्थिरता रूप विभाव का परिणमन। वहां स्वभाव की अस्थिरता है और वहां स्वभाव का निषेध है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब जब भी विभाव होता है तब तब स्वभाव की नजर करके नहीं होता, चाहे वो ज्ञानी की भूमिका में हो और चाहे वो अज्ञानी की भूमिका में हो, उतनी स्वभाव से नजर हटी। माने अज्ञानी की श्रद्धा अपेक्षा और ज्ञानी की चरित्र अपेक्षा नजर हटी तो विभाव हुआ। जब नजर हटने पर विभाव होता है तो जो स्वभाव की नजर हटने पर जो विभाव होता है वो स्वभाव का परिणमन कैसे हो सकता है? आगे बात समझ, बहुत है बातें तो बहुत है इसमें। देखो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्म नो कर्म की बात क्यों कही? कर अपना मूल प्रश्न तो ये चल रहा था कि जो उपयोग में रागादि भाव का निषेध कर दिया तभी बाद में कर्म और न कर्म नो कर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि उसका निषेध करने की उनको जरूरत पड़ी। कि देखो भैया, जब विभाव ही अपना नहीं है तो एक बात, वो विभाव किसका है? कि वो विभाव कर्म का परिणाम है। विभाव तू नहीं, वो विभाव जो कर्म का परिणाम है, जो वास्तव में तेरा उत्पाद नहीं है, वो कर्म तू नहीं है, वो कर्म तुझ में नहीं है। तेरी सत्ता में ना कर्म है ना विभाव है। अरे उसमें आता है अपने उसमें अपने नियम सार में एक कलश आता है बहुत अच्छा, उसमें क्या लिखा आचार्य देव ने, टीकाकार मुनिराज लिखते हैं, हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत है इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने हमारे आत्म स्वभाव में किधर नजर गई ज्ञानी की, जब आत्मा के, जब तुम विभाव में अपने पने की स्वीकृति तब तक करोगे जब तक तुम आत्म स्वभाव को नहीं देखोगे, और आत्म स्वभाव देखा और फिर बोलो कि विभाव मेरे में है ना, तभी लोग एक और नया छल निकालते हैं कि ठीक है बात ऐसी है, निश्चय से तो ऐसा ही है जैसा आप कहते हो, है ना। मतलब अज्ञान को बचाने के लिए नयों का ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, निश्चय से तो ऐसा ही, बिल्कुल सही बात है, निश्चय से तो है ही नहीं। भाई साहब निश्चय से नहीं है, ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा है, और इस वास्तविकता का परिचय कराने वाले नए का नाम निश्चय नय है। आत्मा निश्चय से विकार रहित है ऐसा नहीं है, आत्मा वास्तव में विकार रहित है, और वास्तव में विकार रहित है, उस विकार रहित को विकार रहित कहना। अभी क्या करें, वास्तव में विकार रहित कहने में भी जबान अटकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रहित कहने में भी उस विकार का स्वीकार आया, लेकिन क्या करें, हम विकार के साथ अपने को ऐसा एक में कर चुके कि हमें विकार से रहित, विकार से रहित, विकार से रहित, विकार से रहित कह करके समझाना पड़ता है। वास्तव में तो वो अविकारी तत्व है, सच में निर्विकारी भी नहीं। क्या कहा, क्या कहा, अविकारी तत्व है, निर्विकारी भी नहीं। क्यों? क्योंकि निर्विकार वो होता है जिसमें विकार का अभाव होता है, और ये तत्व भगवान आत्मा कैसा तत्व है कि जिसमें विकार का अभाव होना नहीं, सच में जिसमें विकार ही नहीं है, जो आज तक कभी विकारी हुआ नहीं, जो आज तक कभी रागी हुआ नहीं, कभी द्वेषी हुआ नहीं, कभी मोही हुआ नहीं। रागी द्वेषी मोही माना तो गया, लेकिन अज्ञानी की उस मान्यता के अनुसार भगवान आत्मा कभी रागी द्वेषी मोही नहीं हुआ, ऐसा उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा वो किस में है? तो उन्होंने कहा उपयोग में है, उपयोग में है। कौन? उपयोग, उपयोग में है, परिणाम में वो द्रव्य है। यहां पर उल्टा है पूरा, सारे जिनवाणी में आगे आएगा टीका में अपन लेंगे तब, है ना, सारी टीका में द्रव्य को आधार और पर्याय को आधे ही बोला जाता है, निर्मल पर्याय की बात करते हैं यहां पे, है ना, लेकिन संवर अधिकार में उस शैली बदली आचार्य देव ने, निर्मल पर्याय को आधार बनाया, संवर को आधार बनाया और भगवान आत्मा को आधे ही बनाया। क्यों? क्योंकि संवर के उस परिणाम में निर्मलता आत्म सन्मुख झुकने वाले उस निर्मल परिणाम में भगवान आत्मा दिखाई दिया, भगवान आत्मा प्रसिद्ध हुआ। तो जिसमें प्रसिद्ध हुआ वो आधार और जो प्रसिद्ध हुआ वो आधे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बहुत गजब बात है, है ना? ये सामान्य बात नहीं है। आचार्य देव ने प्रदेश भेद की चर्चा की, मूल चर्चा। अभी तो क्या होता है कि जब ये प्रदेश भेद की चर्चा आती है ना, तो फिर लोग बगले झांकने लगते हैं। अरे नहीं, वो तो ठीक है, वो पर्याय प्रदेश तो एक ही है, वो तो अपेक्षा से कह दिया है। मैंने कहा अच्छा, अपेक्षा आचार्य भगवान को पता नहीं थी, तुम्हें पता है सारी अपेक्षाएं। अरे आचार्य भगवान ने अगर कोई बात बहुत फोर्सली कही है, बहुत जोर देकर के कोई बात कही है, तो तुम वहां पर अपनी तथा कथित अपेक्षा लगाकर, अपेक्षा है नहीं वैसी, तथा कथित अपेक्षा लगाकर उस बात को ढीला क्यों करते हो? उस बात पर वजन देने के लिए कि राग और आत्मा के प्रदेश भेद की चर्चा आचार्य भगवान ने की, इसका मतलब क्या है कि तुझे राग आत्मा से ऐसे नजर आना चाहिए जैसे ये माइक तेरे से बाहर पड़ा है, ऐसा तुझे राग आत्मा से भिन्न नजर आना चाहिए। अब तू कहता है नहीं है, तो वो प्रदेश एक ही, वो तो अपेक्षा से कह दिया है, वो तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कह दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कह दिया, मान लिया। तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से ये बात सत्य है या कह दिया है? पॉइंट समझ में है कि नहीं है? कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से तो सत्य है ना, तो हमें अभी द्रव्य दृष्टि ही कराना है। अभी तुम और सारी चीजें घर छोड़ के आओ, अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई, महाभाग्य से कभी कभी परमार्थ का कोई गंभीर रहस्य आचार्य भगवंतों के मुख से निकलता है। अरे नहीं तो जिनवाणी में भी, समय सार में भी निश्चय प्रधान ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन अगर समय सार की एक एक गाथाओं का विश्लेषण करोगे ना, तो व्यवहार की बातें ही ज्यादा आएगी इसमें भी। क्यों? क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ समझा नहीं सकते, मजबूरी थी आचार्यों की। और कोई महाभाग्य से, हमारे महाभाग्य से कोई ऐसी फोर्सफुल बात आचार्य देव के मुख से निकले, तो उस बात को झेलने के बजाय, उस बात को उत्साहपूर्वक झेलने के बजाय, हम अपने दुराग्रह के तर्क खड़े करें, ये तो ऐसा कह दिया है, ऐसा होता थोड़ी है। आचार्य को पता था कि अगर मैं ये कहूंगा कि पर्याय के प्रदेश भेद है, तो ये कोई जगत मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य और पर्याय, ये तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, वो अलग अलग अनेक प्रकार की बातें लाके खड़ा करेगा। इसलिए आचार्य देव ने वस्तु सिद्ध किया है पहले। राग एक वस्तु है और भगवान आत्मा एक वस्तु है। ये वस्तु सिद्ध करके कि वस्तु है ना, तो वस्तु का वस्तुत्व आधा तो इस वस्तु में हो और आधा इस वस्तु में हो। वस्तु का वस्तुत्व क्या है? कि वस्तु का वस्तुत्व है उसका अपना स्वचतुष्ट है। वस्तु अपने में परिपूर्ण होती है, जो अपने में परिपूर्ण होती है उसका नाम वस्तु है, है ना? तो आश्रव है ना, राग है ना, कि राग भी अपने में परिपूर्ण एक वस्तु है। और भगवान आत्मा है ना, कि भगवान आत्मा भी परिपूर्ण अपने में एक वस्तु है। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। क्या नहीं हो सकता? कि राग का और सब तो राग के पास हो और राग के प्रदेश आत्मा के पास हो। मैंने क्यों भैया, आत्मा को क्या जरूरत पड़ी कि राग का सब कुछ राग को सौंप करके उसके प्रदेश अपने पास रखे? आत्मा को क्या जरूरत पड़ी ऐसी, बताओ जरा। और आत्मा दो दो प्रदेशों को संभालेगा कहां? अब ये इस एंगल से सोचो कि आत्मा अपने अपने प्रदेशों को भी संभाले और आत्मा राग के प्रदेशों को भी संभाले। राग का गुलाम है आत्मा क्या? नक्की तो करो जरा कि किस शैली से आचार्य देव ने बात की है। उन्होंने पहले वस्तु वो जानते थे, पहले उन्होंने वो तर्क रखे। मैं चर्चा करूंगा ये सारी, आपको वो सारे बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, और एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण नहीं मिले आपको। क्यों? क्योंकि गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के बिना तो एक शब्द बोलने की अपनी हिम्मत नहीं होती है, और गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण मिल जाए ना तो फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाओ, फिर अपन किसी से चूकते नहीं है। ये अपन लोगों की विशेषता होनी चाहिए। गुरुदेव श्री मिल गए ना, कहीं नहीं, नहीं वो गुरुदेव की बात तो ठीक है, बहुत से लोग बोलते गुरुदेव ने तो कहा है, लेकिन आगम में मैंने कहा तुझे अभी जीवन तो आगम को छोड़ के जड़ागम की पढ़िए। अरे ज्ञानी की वाणी, आगम क्या होता है? अच्छा बताओ मुझे, ज्ञानियों ने जो लिखा वो आगम, और ज्ञानियों ने जो बोला, मुनिराज का उपदेश होता है तो आगम होगा क्या? आगम होगा कि खाली प्रवचन होगा जी? आगम नहीं होगा वो, जिनागम नहीं होगा वो। उन्होंने लिखा वो जिनागम, और उन्होंने बोला वो जिनागम नहीं। गुरुदेव श्री अगर आज एक ग्रंथ लिखते, गुरुदेव श्री अगर आज ग्रंथ लिखते, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष महाप्रकाशक लिखा, तो उस मोक्ष महाप्रकाशक को हम आगम मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। और टोडरमल जी साहब का प्रवचन हो तो कहेंगे नहीं जी ये तो आप खाली प्रवचन कर रहे हो। अरे जब लिखा वो आगम और बोला वो आगम, हमारे गुरुदेव ने लिखा नहीं लेकिन गुरुदेव ने बोला, और उसके पीछे कारण है, क्योंकि तीर्थंकर कभी लिखते नहीं है, वो बोलते हैं, और जो वो बोलते हैं उनकी वो वाणी आगम होती है, है ना? गुरुदेव तो भावी तीर्थंकर का जीव है ना? तो उनको तो वर्तमान में ऐसा उदय, बहिंश्री के वचनामत में आया ना, गुरुदेव को तो मानो तीर्थंकर का उदय वर्तता हो, है ना? तीर्थंकर कभी बोलते नहीं है, ये लिखते नहीं है, सॉरी लिखते नहीं है, लिखने का काम दूसरे लोग करते हैं, वो बहिंश्री करेंगी, गणधर होएंगे ना तब वो करेंगी वो काम, गुरुदेव नहीं करेंगे। गुरुदेव की वाणी खिरेगी, और वर्तमान में भी उसका एक नमूना आया। क्या नमूना आया? कि गुरुदेव ने सिर्फ बोला, छोटे मोटे हस्ताक्षर कहीं किए हो वो कोई गिनती में नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की, और ग्रंथ की रचना नहीं करने के बाद भी उनकी वाणी से इतने ग्रंथ रचे गए कि आज हमारे मंडल कहने लगे कि भाई साहब अभी छपाना बंद करो, कहां रखें? सोचो जरा, ये कमाल है भाई साहब, ये तो अद्भुत स्पष्टीकरण है। तो उन्होंने, गुरुदेव ने जो उसका स्पष्टीकरण किया, 15वीं बार का प्रवचन आपके यहां चल चुका है, अभी चल रहा है, वो तो इस गाथा की बात कर रहा हूं, इस गाथा का प्रवचन चल चुका, और मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि इन गाथाओं का 15वीं बार का प्रवचन दोबारा सुन लेना, घर पर सुन लेना, यहां तो चल रहा है वो चलने दो, घर पर आप सुन लेना। गुरुदेव ने कहा जब भिन्नता होती है तो सब कुछ भिन्न होता है, है ना? कि जब अभिन्नता होती है तो सब कुछ अभिन्न होता है, आदि भिन्नता और आदि अभिन्नता का कोई स्वरूप नहीं होता, है ना? समझ में आ गया? तो वो बात यहां पर कहा, और उसके बाद तीसरी नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा ऐसा अविपरीत ज्ञान। क्या मतलब इसका भैया? कि ऐसा अविपरीत ज्ञान जारे उद्भवे छे जीव ने, इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम्हें खाली ऐसा अविपरीत ज्ञान करना है, अविपरीत कहो या यथार्थ कहो, कि ऐसा यथार्थ ज्ञान करना है तुम्हें, राग और आत्मा को, तुम्हें उपयोग और क्रोध को, उपयोग और नौ कर्म को, उपयोग और द्रव्य कर्म को भिन्न नहीं करना है। क्यों नहीं करना भिन्न? क्योंकि भिन्न तो वह है, तुमने भिन्न में अभिन्न माना, भिन्न को अभिन्न जाना, भिन्न में अभिन्नपने का आचरण किया। आचार्य भगवान कहते हैं कि अब तुम ऐसा यथार्थ ज्ञान करो कि ये भिन्न हैं, अभी मैं स्वीकार करता हूं, जिस समय मैंने इन्हें अभिन्न रूप से स्वीकार किया था तब भी इनमें अभिन्नता नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें अभिन्न रूप से स्वीकार किया, और यदि इनमें अभिन्नता होती तो मेरा वो स्वीकार सम्यक दर्शन कहलाता। पॉइंट समझ में आया, है ना? मैंने अभिन्नता स्वीकार की, मैंने अपने को रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी विकारी स्वीकार किया, और मेरे उस स्वीकार का नाम मिथ्या दर्शन, मेरी उस मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन, मेरे उस अभिप्राय का नाम मिथ्या दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय मैंने इन्हें अभिन्न रूप से स्वीकार किया था उस समय भी ये नितांत भिन्न थे। अगर भिन्न नहीं होते तो अभिन्न को अभिन्न स्वीकार करने का नाम मिथ्या दर्शन नहीं होता, सम्य दर्शन होता। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इन्हें भिन्न नहीं करना है, लेकिन भिन्न नहीं स्वीकार किया था यह मेरा उल्टा ज्ञान था, यह मेरा विपरीत ज्ञान था। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान नहीं था, इसलिए अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं अविपरीत ज्ञान अर्थात ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं और क्रोध में उपयोग नहीं। उपयोग आठ प्रकार के कर्म में और नौ कर्म में नहीं है, और नौ आठ प्रकार के कर्म और नौ कर्म उपयोग में नहीं है। फिर यहां पे आचार्य भगवान अंतिम गाथा में कहते हैं, आउ अविपरीत ज्ञान जारे उद्भवे छे जीवने। उद्भव ऐसा ज्ञान जिस समय उदित हो, है ना, किस समय, जिस समय जब जाग जाओ तभी सवेरा, नहीं जागे तो क्या, नहीं जागे तो 12 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता। बहुत से लोगों की आदत होती ना 10-10, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, तो क्या करें उनके लिए कि वो 12 बजे तक भी उनके लिए अंधेरा, और अगर हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए तो हमारे लिए सवेरा। ये तो ऐसा मार्ग है ना भैया कि जब जाग जाए तभी सवेरा। तो यहां पे कहते हैं कि जारे उद्भवे छे जीव ने त्यारे न कहीं पण भावते उपयोग शुद्धात्मा करे। तो उस समय जब ऐसा ज्ञान उदित होता है उस समय वो शुद्धात्मा केवल उपयोग मैं अपने परिणाम का करता होता है, अन्य किसी भाव का अर्थात क्रोधादि भाव का, कर्म का, नो कर्म का वो शुद्धात्मा कदापि करता नहीं होता। देखो करता तो अज्ञान दशा में भी नहीं था, सच बात तो यह है कि करता तो अज्ञान दशा में भी नहीं था, लेकिन अपने को करता मानता था इसका नाम अज्ञान दशा थी। क्या कहा, अज्ञान दशा में करता ना, अज्ञान दशा में करता नहीं, लेकिन करता नहीं होने पर भी अपने को करता मानता है, अरे इसका नाम अज्ञान दशा है। क्या करे, कैसा गजब का स्वरूप है, देखो तो भाई हैं। अब ये देखो, अभी अपन अन्वयार्थ देख लेते हैं। उपयोग उपयोग मां छे, बहुत गजब का अन्वयार्थ है, टीका फिर शुरू करेंगे। और देखो अन्वयार्थ पढ़ने के बाद उपयोग उपयोग मां छे, अच्छा क्रोधादि मां कोई उपयोग नथी। कोई उपयोग नथी मतलब क्या, एक एक शब्द में ध्यान दो, कोई किसी भी प्रकार का, वो बराबर शब्दार्थ तो बराबर हुआ, अभी भावार्थ बताओ कि दो प्रकार का उपयोग होता है, एक होता है त्रिकाली उपयोग, उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा, और एक होता है उस उपयोग का अनुसरण करके वर्तने वाला वर्तमान परिणाम रूप उपयोग, जिसे अपन शुद्ध भाव कहते हैं, कहते हैं ना, है ना। तो इन क्रोधादि में त्रिकाली उपयोग तो है ही नहीं, उसका तो नितांत अभाव है ही। अरे जो शुद्धता असूस त्रिकाली उपयोग का अनुसरण करके परिणमन रूप जो उपयोग हुआ, उस उपयोग वह उपयोग भी या उस वह उपयोग भी उसमें कोई भी उपयोग नहीं, उपयोग में उपयोग है और क्रोधादि में कोई उपयोग नहीं है, न त्रिकाली उपयोग और न वर्तमान परिणमन रूप उपयोग, कोई उपयोग नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या कहा, और क्रोध क्रोध माज छे, क्रोध क्रोध माज छे उपयोग मा। अब उपयोग मा माने क्या कि वो त्रिकाली उपयोग में भी नहीं और वर्तमान परिणमन रूप उपयोग में भी कौन नहीं है, कि क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है, निश्चय थी खलु। अभी निश्चय थी में, ये निश्चय थी मैंने, निश्चय नए वाला निश्चय थी नहीं है, खलु। खलु का मतलब होता है वास्तव में। क्यों निश्चय नए वाला निश्चय लगाने में क्या तकलीफ थी? कि देखो एक चीज समझ लेना, नए हमेशा सापेक्ष होते हैं। और जब आचार्य ये कहते कि भाई निश्चय नए से आत्मा में उपयोग, आत्मा में क्रोध नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है, तो अपन कहते ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो कैसे भी एंट्री दिलवानी है उसे। अब तुम निश्चय से नहीं दो तो हम व्यवहार से, हमें तो एंट्री मिलना चाहिए। तो आचार्य ने यह कहकर कि खलु, खलु माने वास्तव में, वास्तव में खरेखर एमज छे, है ना, वास्तव में नहीं है। आचार्य, अपन लोग अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं ना, आचार्य कहते हम तुम्हारी समझदारी पहले से समझते हैं कि तुम कहां समझदारी लगाओगे, तो वो समझदारी उन्होंने पहले से ही उड़ा दी। खलु, खलु माने वास्तव में, इसका मतलब क्या कि कहने सुनने के लिए तुम कुछ भी कहो लेकिन वास्तविकता यही है, और यह वास्तविकता कभी किसी के लिए कहीं किसी काल में बदलने वाली नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे देखो, बहुत बढ़िया गाथा है भैया, क्या करे मजा आता है इस गाथा में। तो देखो क्रोध नहीं है, आठ प्रकार के, अभी मैं उपयोग में उपयोग और क्रोध में क्रोध उसकी चर्चा टीका में करूंगा, इसलिए खाली अनुवाद पढ़ रहा हूं अभी। उसके बाद लिया आठ प्रकार ना कर्म तेमज नो कर्म मा उपयोग नथी, हो गया। अने अने उपयोग मा कर्म तेमज नो कर्म नथी, ना अस्ति, नो अस्ति, नो अस्ति नथी। आउ अविपरीत ज्ञान जारे जीव ने थाय छे, होता है, होता ज्ञान नया होता है, अविपरीत ज्ञान नया प्रकट होता है, वो जब होता है ना, क्योंकि पहले जब कहने का मतलब क्या कि अभी तक नहीं था, जब प्रकट हुआ, जब प्रकट होगा तब अविपरीत ज्ञान नया प्रकट होगा, उपयोग और आत्मा की भिन्नता नई नहीं होगी। उपयोग और आत्मा की भिन्नता वो तो अनादिकाल से है। क्यों भाई साहब अनादिकाल से है? क्योंकि अगर अनादिकाल से उपयोग और आत्मा की भिन्नता नहीं होती तो हम उपयोग और क्रोध आदि की भिन्नता नहीं होती, आत्मा और क्रोध आदि की भिन्नता नहीं होती, और अनादिकाल से नहीं होती तो हमें अनादिकाल से आत्मा की विराधना का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भिन्नता है और हम उसमें अभिन्नता मान रहे हैं, है ना, वो अनेकता है और हम उसमें एकता मान रहे हैं। आ गया आगे बात समझ में? तो वो कहते हैं कि वो जीव मां थाय छे त्यारे ते उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा, जिसका स्वरूप उपयोगमय है, उपयोग स्वरूप, इसको ऐसा भी कह सकते हैं उपयोगात्मक, उपयोग स्वरूप, उपयोगमय, एक ही शब्द है, स्वरूप कहो मय कहो आत्मक कहो, एक ही शब्द है। वो शुद्ध आत्मा क्या करता है? उपयोग सिवाय, क्या कहा? उपयोग सिवाय अन्य कोई पण भाव ने करतो नथी। जब ये ज्ञान हो जाता है ना कि फिर उपयोग के सिवाय अन्य किसी भाव को नहीं करता, अज्ञान दशा में भी, अज्ञान दशा में उपयोग का परिणमन नहीं था, उपयोग रूप शुद्ध उपयोग रूप परिणमन नहीं है, लेकिन अज्ञान दशा में अज्ञानी अपने को राग का कर्ता मानता था, ना पर का कर्ता मानता था, स्वभाव अपेक्षा से उस समय भी वो उनका कर्ता नहीं था, क्योंकि यदि वैसा वो होता तो फिर वो अज्ञानी नहीं होता, फिर वो ज्ञानी हो जाता। ये बहुत सारी बातें हैं टीका में, इसका अभी बहुत और स्पष्टीकरण आएगा, उसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं।
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सजानंदी शुद्ध स्वरूपी।